الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنی اسرائیل کا جو ذکر چل رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، بنی اسرائیل کا خطاب کیوں ہے، اور قرآن میں، پورے قرآن کے اندر بنی اسرائیل خاص قوم ہے، اس کا ذکر مسلسل چلتا رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ اس قوم کو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دنیا کی پاپولیشن کو اگر دیکھ رہے ہیں تو کرسچینٹی سب سے بڑا اس کے اندر سلیب ہے، پھر اس کے بعد یہودی، آل دو یہ بہت کم ہے آبادی کے اعتبار سے، لیکن یہ دو جو ہیں یہ اپروکسیمیٹلی دنیا سے زیادہ آبادی یہی ہے دنیا کے اندر اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا ہے کہ یہ دعوت قبول کر لیں، یہ اسلام لے آئیں. نمبر ٹو کی ذکر کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیورٹی کے ساتھ ہمیں بتا دیا ہے قرآن کے اندر، ان کے پاس جو کتاب ہے اور ان کے پاس جو دین ہے اور ان کے پاس جو رسول آئے تھے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. باقیوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، بدھا کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا وہ رسول تھے کیا تھے، یا ہندوازم ہے ان کے اندر کیا کیا ہے، چائنیز کے اندر کنفیوشزم ہے، کنفیوشسٹ کون تھا اس کے بارے میں exactly نہیں ہم کہہ سکتے. ان کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. تو ان کی باتوں کا ذکر کرنا یہ ان کے لیے انکریجمنٹ ہے، تائید ہے ان کی باتوں کی. ہم ان کو اکنالج کر رہے ہیں، ان کے رسولوں کو اکنالج کر رہے ہیں کہ وہ پھر، تاکہ وہ اس طرف مائل ہوں، قبول کریں اس چیز کو. ایک اور ریزن اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دو حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً اپنے پہلے والی امتوں کی پیروی کرو گے قدم بہ قدم، بالکل یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی اس گو کے بل میں گھسو گے. اس کے اوپر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں، کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فمن، تو وہ نہیں تو اور کون، انہی کی بات کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ تم لوگ، یعنی مسلمانوں، تم لوگ اسی طرح کے کام کرو گے، تم بالکل اسی طرح ہی اپنے پہلے والی امتوں کی غلطیوں کو فالو کرو گے جس طرح کے وہ کرتے آئے تھے، اور اگر وہ ان میں سے کوئی ایک گو کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی گو کے بل میں گھسو گے. یعنی کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کی غلطیوں، کوتاہیوں کے ذکر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جھلک اس امت کے اندر بھی نظر آئے گی، اس سے ہدایت پکڑو، ایک وجہ یہ ہے. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، اس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ میری امت کے اوپر بھی اسی قسم کے حالات وارد ہوں گے، آئیں گے، وہی اسی قسم کی کنڈیشنز ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گی جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر آئے تھے. حزب النعل بن نعل، جیسا کہ ایک جوتی دوسری جوتی کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے، ایک پیر ہے جوتی کا، اس کے دونوں جو پیر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں، اسی طرح ہی یہ امت جو ہے یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی غلطیوں میں اور ان کے حالات جو ان کے اوپر وارد ہوئے تھے ان کے ساتھ مشابہ ہے. ان کان منہم من اتا امہ علانیہ، یہاں تک کہ اگر اس میں سے، اس امت میں سے، بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ کھلم کھلا اس نے بدکاری کی تھی، لکان فی امتی من یسنعو ذالک، تو اس امت میں سے بھی یقیناً کوئی ایسا شخص ہوگا جو کھلم کھلا اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اور اگر بنی اسرائیل جو تھی وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، تو میری امت پھر 72 فرقوں میں بٹے گی. وہ اگر 72 فرقوں میں بٹے تھے تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سب کے سب جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملت واحدن، سوائے ایک ملت واحد کے. اس کے اوپر صحابہ نے پوچھا قالو ومن ہیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وسلم یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے. قالا رسول اللہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ جو میرے طریقے کے اوپر اور میرے صحابی کے طریقے کے اوپر فالو کریں گے. اس کے اوپر وضاحت بعد میں کروں گا، ابھی ہم لوگ جو اصل ٹاپک ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ تم لوگوں کے اوپر وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر حالات آئے تھے، بالکل اسی قسم کی تم حرکتیں کرو گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایسا تھا جو ایک گو کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی گو کے بل میں گھسو گے. अगर उनमें से किसी ने इस कदर घटिया हरकत की कि अपनी सगी माँ के साथ खुलम एलानिया बदकारी कर बैठा, तो तुम में से भी यकीनन ऐसे होंगे जो इस तरह की हरकत करेंगे। और अगर वो वाहिद से टूट के फिरका फिरका हो गए थे, 72 फिरकों में बट गए थे, तो तुम लोग भी 73 फिरकों में बट जाओगे और वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे। तो ये कॉमनैलिटी है दोनों उम्मतों के बीच में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसका मतलब ये है कि ये बनी इसराइल के जो किस्से हैं, ये हमारी हदायत के लिए है, हम इससे नसीहत पकड़ें। तो जो हमने रुकू पढ़ लिया बनी इसराइल का, उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें की थी इनसे, उस किताब के ऊपर जो है ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की है, और वला तश्तरी आयाती समरन कलीला, और मेरी आयात को कम कीमत में मत बेचना। इस उम्मत के अंदर भी वही मसला आया कि हम लोगों ने अल्लाह ताला की जो दी हुई किताब थी उस पर ईमान तो नहीं लाए उस तरह हम लोग, और उसको हम लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से दुनियावी फायदों के एवज हमने उसके आयात को बेकाऊ माल बना दिया। हमने जब चाहे हम लोग उसको तफरीक पैदा कर लेते हैं, उसके अंदर फ़र्क डाल देते हैं, आयात के तर्जमे के अंदर अपनी मर्जी के फतवे ले लेते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको कहा वला तलबसुल हक्का बिबातिल वतक्तुमुल हक्का, ना तो तुम हक को छुपाओ और ना ही हक बात को बातिल के साथ गठमेंट करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कह दिया कि अतामरून नासा बिल बिर, तुम लोग दो लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूले हुए हो। यही का मामला हम लोगों के अंदर भी है, एक दूसरे के लिए तो हम बड़े मशवरे दे रहे होंगे, एक दूसरे से पूछा जाए कि आप बताएं ये फलाना मसला किस तरह लोना चाहिए, हमें से हर कोई पता बड़ा फिलोसोफर बना होगा, अपनी हरकत कुछ होती नहीं हमारे अंदर। अब उसके बाद आगे जो अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं बनी इसराइल से डायरेक्ट खिताब करके, ये आयत जो है ये आगे जाके दोबारा कवर होगी तकरीबन 10 रुकू के बाद, 9 रुकू के बाद तकरीबन ये आयत दोबारा रिपीट होगी। तो इन रुकू के दरमियान में जितनी भी आयात हैं अल्लाह ताला ने इन सब के अंदर बनी इसराइल के वाकयात को जिक्र किया है, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन देख ली थी इसलिए वो सीक्वेंस जो है वो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि इन सीक्वेंस में वाकयात हैं। या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, उस्कुरु नेमती, याद करो मेरी उस नेमत को, अल्लती अनाम तो जो मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम की थी, मैं तुम्हें गिफ्ट की थी, व अन्नी फजल तुकुम अल आलमीन, और मैंने तुम्हें फजीलत दी थी तमाम जहां वालों पर। अल्लाह ताला की जो आपको बताया था कि नेमतें क्या थीं, वो तो अल्लाह ताला ने आगे गिनवाया भी हुए नेमतों को, लेकिन सब नेमतों में आपको एक्सप्लेन किया था कि असल नेमत क्या है, नेमत हिदायत है, नेमत ईमान है, सबसे बड़ी नेमत वही है, बल्कि है ही नेमत वो, बाकी सब के सब चीज़ें डिपेंडेंट हैं उस नेमत के ऊपर। अल्लाह ताला अपनी उस चीज़ को याद करा रही, उस नेमत को याद तो करो कि किस तरह मैंने तुम्हारे अंदर नसल का नसल मैंने अंबिया का एक सिलसिला फिक्स कर दिया था, मुसलसल नबी मौजूद रहे, और साथ के वन्नी फजलतकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें जहां वालों के ऊपर फजीलत दी थी। मुझे अगर अल्लाह ताला ने एक मुसलमान घराने में पैदा किया है तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से ग्रांट है, ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं डिज़र्व करता था कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और जो किसी हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं तो वो तो है ही ऐसे, वो तो डिज़र्व ही नहीं करते कि वो मुसलमान घर में पैदा होते हैं, वो तो है ही जहन्नम के लिए पैदा हुए हैं, वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ पे दुनियावी एतबार से बता रहे हैं कि तुम्हें मैंने कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया था कि तुम लोग वो हो जो पैगम्बरों की औलाद हो, तुम लोगों के बीच में पैगम्बर रहे थे। याकूब बताया था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मजहब भी और ये नस्ली मजहब भी है, उस नस्ल के अंदर मुसलसल चले आ रहे हैं ये लोग। हम लोगों की नस्ल उस हिसाब से उम्मत मुस्लिमा जो है ये उस सेंस में नस्ल नस्ली तो नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें हो, तो ये औलाद भी तुम लोग उन्हीं की पैगंबरों की हो और तुम लोग नस्ल नस्ल हमने पैगंबर तुम लोगों में हमने बता रहे थे। इस बात को लेकिन तुम लोग अपने लिए गुरूर तकबर का मसलाना बना लो, ये कोई तुम्हारी प्रिविलेज की बात नहीं थी, ये तुम्हारा कोई कमाई नहीं है, ये तुम डिज़र्व नहीं करते थे, मैंने तुम्हें गिफ्ट किया ये, वरना अदरवाइज तुम्हारे अमाल या तुम्हारी वो चीज़ें उनके मुताबिक नहीं ये किया था। वत्तकु, और बचो उस दिन से, डरो उस दिन से, यौम ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी जान के बिल्कुल कोई काम नहीं आएगी, उस दिन से डरो। बात हो रही है क़यामत वाले दिन की। दुनिया के अंदर आधा से ज़्यादा काम चलता है हमारा रेफरेंस के साथ है, कोई छोटा सा काम करना होगा आप अपने किसी रिलेटिव को कहते हैं कि मेरा काम कर दो, या ये किसी और को, किसी दोस्त को कहेंगे, किसी और रिलेटिव से कहेंगे कि भाई आपका कोई रेफरेंस है वहाँ पे तो मेरा ये मसला हल कर दें। चाहे हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है तब भी हम किसी और का ही हवाला पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या कोई बताओ कोई दुकान है यहाँ से डिस्काउंट पे मिल जाए, या कोई बा एतमाद का बंदा हो, या मुझे बता दो मुझे फलानी चीज़ मिल जाएगी। कहीं अप्लाई करना हो तो हम किसी और बंदे का सहारा पकड़ते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना हो तब भी किसी और का सहारा पकड़ते हैं, एडमिशन के लिए करना हो, हमारे पूरी ज़िंदगी का सिलसिला ही इस तरह चलता है। यहाँ तक कि अगर कहीं शादी करनी है, अरेंज मैरिज होती है, तो तब भी रेफरेंस ही देख रहे होते हैं कि भाई कोई आपके नज़र में कोई रिश्ता हो तो बताना हमें, रेफरेंस रेफर करना हमें, एक दूसरे के लिए इस तरह मदद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के बिल्कुल कोई काम नहीं आएगी। बल्कि कुरान के अंदर आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, खासतौर पर जो मक्की सूरतें हैं उसके अंदर यह है कि हर कोई जान छुड़ाएगा एक दूसरे के साथ, किसी के काम आना कहाँ दूर की बात है। वला युक्बलु मिनहा शफातन, और किसी से किसी नफ्स से कोई शफात कबूल नहीं की जाएगी, किसी किस्म की कोई सिफारिश किसी के लिए कबूल नहीं की जाएगी। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और किसी से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा या किसी से कोई चीज़ उसके एवज नहीं ली जाएगी। यानी कि अगर आप जान छुड़ाने के लिए उसके बदले में, अदल वैसे कहते हैं बदले को कहते हैं ना, अगर किसी ने आपके साथ जाते कि आप इंसाफ क्या है, अदल क्या है कि उसको पनिश किया जाएगा उसी के मुताबिक, ना ज्यादा ना कम, उसकी प्राइस पे की जाएगी उसे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस अजाब से बचने के लिए ना तो किसी का रेफरेंस कबूल होगा, ना किसी और की सिफारिश में कबूल करूंगा, और ना ही तुम किसी तरह से उसका बदला चुका सकोगे कि पनिशमेंट के तौर पे चले मेरे इतने पैसे ले लें या मुझसे ये चीज़ ले लें, वो उनमें से कोई चीज़ अल्लाह ताला नहीं कबूल करेंगे। वला हुम युनसरून, और किसी किस्म की उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी ऐसे लोगों की। यहाँ पे अल्लाह ताला ने पहले अल्लाह ताला ने नेमत गिनवा के और यह कि मैंने तुम्हें फजीलत दी, साथ अल्लाह ताला इतनी सख्त बात कर रहे हैं कि तीन चार बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पे कि ना तो उस दिन कोई बंदा किसी के कोई काम आएगा, ना ही किसी किस्म की मैं सिफारिश कबूल करूंगा, ना ही तुम उसकी कोई कीमत अदा करके जान छुड़ा सकोगे, अदल पूरा हो सकेगा उसका, और ना ही किसी किस्म की मदद की जा सकेगी, मेरी तरफ से भी कोई मदद नहीं होगी। इतनी ये दो बातें, ये दो आयात आगे सामने क्यों है? एक तरफ अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं फजीलत का, और साथ ही अल्लाह ताला इतनी सख्त बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला की जो फजीलत थी उनके ऊपर, ये इन्होंने उसको ले लिया फॉर ग्रांटेड कि हमें, हम तो पैगम्बरों की औलाद हैं, हमारे लिए तो नबूवत खास है, और हम लोग तो क्योंकि कलमा गो हैं इसलिए हम तो जहन्नम में डाले नहीं जाएंगे। अगर डाले गए, हम तो देखें ना, हम लोग एक रसूल सल्लम के सहारे के ऊपर जो ना, हम लोग हमने कितने कितने में नज़रियात बनाए हुए, उनके पास तो पैगम्बरों की लिस्ट मौजूद है, हर बंदे की हर दौर में नबी मौजूद था, तो उनके पास इतनी लंबी लिस्ट है, उन्होंने कहा कोई मसला ही कोई नहीं है हमारे लिए, तो कितनी ज़्यादा लोग हैं हमारे लिए इस्तफाद करने वाले, कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। और जिस तरह उन लोगों ने इनकैश किया हुआ था, उनके उलमा ने इनकैश किया हुआ था अवाम को कि तुम लोग जो हो तुम लोग इस काबिल नहीं हो, आम आवाम के ऊपर कि देखो ये किताब अल्लाह की किताब जो है ये तुम लोग नहीं पढ़ सकते, ये तुम इस काबिल ही नहीं हो, ये तो नेक जो लोग हैं उनके पढ़ने की चीज़ है, तुम लोग उन लोगों के सहारा पकड़ सकते हो लेकिन तुम खुद नहीं कुछ कर सकते। यही काम हमारे उम्मत के बीच में भी है, हम लोग जो हमारे उलमा हैं वो आवाम को डायरेक्ट कुरान को समझने पढ़ने से मना करते हैं कि नहीं नहीं आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, आपको आलम दीन है, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई उलमा से अगर आपने सीखा है तो बात है, वरना आप कुरान नहीं पढ़ सकते, आप कोई तशरीह करेंगे तो वो बातिल है, गलत है, और वो गलत नज़रियात हैं आपके, अगर आप अपनी तरफ से खुद कुछ उसके अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर उलमा से पढ़ा है तो सिर्फ वही वाहिद चारा है आपके पास, या उलमा से जाके पूछें फतवा लें, उनसे जाके उन्हीं से जाके मसले पूछें। और इजाफी तौर पे ये भी आवाम को बावर करवा दिया है जिस तरह उन लोगों ने किया था, उम्मत ने, इस उम्मत ने भी, उलमा ने यही कर लिया कि तुम लोग तो इतने गुनाहगार हो, तुम लोग तो ऐसे हो कि तुम लोग डायरेक्ट तो अल्लाह ताला तुम्हारी सुनने का ही नहीं, इसलिए क्या करो, इसलिए तुम्हें जरूरत है सहारों की, अल्लाह को अगर पुकारना है, अगर तुमने अपने बख्शिश करवानी है तो कुछ सहारा पकड़ो। तो ये जो हम लोग हैं, नेक लोग हैं हम लोग हैं, हमारा आके सहारा पकड़ो, आके मदद आएगी अल्लाह ताला की तो फिर किसी वसीले के जरिए से ही आएगी। तो उन लोगों ने अपनी इस फजीलत को ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अब इसके ऊपर आयात अगर पढ़ी जा रही हैं कि क़यामत वाले दिन ये होगा, फलाना होगा, तुमने अगर ये गुनाह किया वो कर गया, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने रसूल सल्लम की हदीस है उसको गलत मायने ले लिया, हमने क्या समझ लिया, आम आदमी किसी से आप कहें, आपका कोई फ्रेंड हो कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कि यार तुम नमाज पढ़ो या फलाना काम करो या झूठ मत बोला करो या फलाना करो, इसका इतना गुनाह होगा, ये अगर हंस के ये कहते हैं हम लोग कि यार कोई बात नहीं, बिल आखिर तो निकल जाएंगे ना जन्म से, बिल आखिर तो निकल जाएंगे, جنت میں بالآخر چلے جائیں گے نا. تو اس لیے تو تمام جو آیات ہیں جو جہنم کا ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر یا قبر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں یا قیامت والے دن یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ سب چیزوں کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے جب نظریہ اتنا غلط ہو جائے کہ ہم لوگ لازماً جنت میں جائیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اور ہم میں سے ایک ایک جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اور ہم بچے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے, بس ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں گے اور بس یہ ضروری شریف کا ورد کرتے رہو یا فلانے چیز کرتے رہو یا فلانے جو وہ ہیں پیر ہیں یا فلانے عالم ہیں ان کے ساتھ بیعت کر لو یا کچھ نہ کر لو, اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاؤ تو بس بیڑا پار ہو جائے گا, مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ تمہاری شفاعت کرا لیں گے. اس طرح کے نظریات عام ہو جائیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر عمل کی اہمیت نہیں رہتی. حالانکہ اس کی کچھ سینس بنتی ہے, کبھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح ہوگا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں, مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ پہ کوئی لیڈر بنا ہوا ہے, اس نے کرپشن سے پیسہ بھی لیا, ہمارے شاید ہی کچھ سیاستدان ہوں گے جن کے اوپر کرپشن کا کیس نہیں ہوگا, جن کے اوپر قتل کا کیس نہیں ہوگا, جو کسی کرائم گروپ کے ساتھ انوالو نہیں ہے, گاڑیاں جو سنیچ ہوتی ہیں ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی پولیٹیکل گروپس ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں, جو اغوا ہوتے ہیں ان کے پیچھے پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی, جو ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے اغوا کر کے کہیں اور بھیجے جا رہے ہیں یا لڑکیاں اغوا کر کے کہیں اور بھیجی جا رہی ہیں, وہ ان کے پیچھے ہمیشہ اس طرح کے بڑے بڑے گروپس لگے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے اس طرح کے گناہ کیے ہوں گے, بڑے بڑے گناہ کمائے ہوئے پوری زندگی کے اندر اور دتھا جمع کیا ہوا, کتنے کتنے خاندانوں کو برباد کیا, کتنی کتنی نسلوں کو برباد کیا انہوں نے, یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم لوگ جو مرضی عمل کرتے رہے, سال کے اندر ہم جا کے کیا کریں گے, کسی بزرگ کی قبر پہ جائیں گے چادر چڑھا لیں گے. آج کہاں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ حد تصرف تب کریں گے جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے. انہوں نے کیا سمجھا ہوتا ہے, بس ہم جا کے کسی نہ کسی بزرگ کی قبر پہ چادر چڑھا لیں گے اور کام ختم ہو جائے گا ہمارا, ہم داتا شریف چلے جائیں گے وہاں جا کے ہم چادر چڑھا لیں گے, چاہے جتنے مرضی میں گناہ کروں یہ کام کیا بس میرا بیڑا پار ہو گیا. کہیں کسی کو عقل گوارا کرتی ہے کہ ڈائریکٹ مسئلے کو انہیں شفاعت ہو جائے گی اس سے؟ کیا یہ ایسے سیاستدان اور ایسے مولوی جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, پیسہ کمائے جا رہے ہیں, حق بات کہیں گے نہیں اور جھوٹ بول رہیں گے, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, شفاعت آرام سے ہو جائے گی. اور ایک اسی علاقے کا ایک سویپر جو جھاڑو پیر پھیرتا ہے اور کرسچن ہے, وہ ایمانداری سے ڈیوٹی پہ آتا تھا, جو سی ڈی اے یا جتنے بھی پنڈی کے ڈویژن ہیں یہاں پہ پے رول اگر دیکھیں تو اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے جو امپلائیز ہوتے ہیں, ایکچولی کام کوئی کر ہی نہیں رہا ہوتا, اگر کام کر رہے ہوتے تو صفائی ہمیں نظر آتی, ہمیں تو ہر وقت کوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے, لوگ آتے ہی نہیں کام کرنے. بالفرض ایک کرسچن تھا, وہ ایمانداری کے ساتھ آ کے کام کیا جا رہا تھا, چاہے اس کے کولیگز آ رہے نہیں آ رہے, اپنے علاقے کی وہ صفائی کر رہا تھا, سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا وہ, اور ہم صرف یہ کہہ دیں کہ وہ تو جائے گا جہنم میں, اسے تو لازماً جہنم میں ہی جانا ہے, وہ تو ہے ہی چوڑا. اللہ تعالیٰ اس قدر اللہ جاتی کرنے والے ہوں گے کہ کیونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تھا, چاہے جتنے مرضی بدماشی تھی اس کی, جو مرضی تھا, جتنے مرضی لوگوں کو اس نے قتل کر لیا تھا, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, چاہے یہ فلانے سیاستدان جتنے مرضی گناہ کیا, جتنے مرضی چوری کی, جتنے مرضی لڑکیاں اٹھوا لیں, ریپ ہوا, کچھ ہوا, جتنے مرضی کرپشن ہوئی لوگوں کی, ابھی یہ جو گیس والا جو پکڑا گیا تھا وہ 82 ارب 82 بلین 82 ارب کے مطلب کہ حد ہوتی ہے لوٹنے کی بھی, کتنے لوگوں کی یہ جاتی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کے مال کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے. جب یہ اس طرح کے غلط نظریات آ جائیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے جس طرح ہم لوگوں کا ہوا ہے حال. اب لوگ خود سوچیں, ہم لوگ میلاد کیوں ارینج کرتے, صرف میلاد ہی کیوں ارینج کرتے ہیں ہم لوگ, ہم باقی کوئی اور چیز کیوں نہیں ارینج کرتے؟ کیونکہ انہی نظریات کے اوپر ہم لوگ جی رہے ہیں کہ بس یہ ایک چیز ہے, ایک وسیلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, لیکن ہم نے اس چیز کو کیا بنا لیا ہے, ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا ہم نے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اب ہم لوگ بالکل بے عمل ہو کے رہ گئے ہیں مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز ہے, آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں, ہماری زندگی میں کون سی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم کو بتا سکتے ہیں ہم نے کوئی کسی خاص سنت کے اوپر عمل کیا ہے ہم نے کانشیسلی؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے پچھلے پورے ہفتے میں, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ربیع الاول بھی گزرا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی نعتیں بھی پڑھی ہیں, درود پاک بھی بھیجا ہے, कोई आप बताएं कि कोई एक नई सुन्नत आपने इसके ऊपर अमल करना शुरू किया हो, आप कोई एक सुन्नत। हम रसूल सल्लम के फैन नहीं है हम लोग, हम उनके हकीकत में चाहने वाले नहीं है उस सेंस में जो होना चाहिए। यही है नजरियात ये लोग लेके बैठे हुए थे। इसलिए अल्लाह ताला कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि दुनिया में तो मैंने तुम्हें फजीलत दी थी कि मैंने तुम्हें मुसलमान घराने में पैदा किया, अपनी किताब नसीब की, पैगम्बरों की तुम औलाद हो, पैगम्बरों में से तुम थे, ये तुम्हारी जो और जो बाकी मैंने तुम्हें नेमतें दी वो सब चीज़ें उनको याद रखो, मत पूरे पूरे जहान वालों पे मैंने तुम्हें फजीलत दी। लेकिन उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे जान के कोई काम नहीं आएगी, तुम्हारे वाले तुम्हारे कोई जान नहीं बचा सकेंगे, कोई तुम्हें अगर दुनिया के अंदर तुम किसी सियासी के पनाह में थे आखिर में वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, कोई मौलवी साहब तुम्हें नहीं बचा सकेंगे, कोई तुम्हें कोई पीर साहब नहीं बचा सकेंगे, तुम्हें कोई शख्स नहीं बचा सकता, किसी की शफात कबूल नहीं होगी, वला युग वला मिनहा शफात, किसी किस्म की किसी शख्स की कोई शफात मैं कबूल नहीं करूंगा, किसी शख्स से मैं किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं कबूल करूंगा और कोई किसी किस्म की मदद नहीं की जाएगी। कैटेगोरिकल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया की जो नेमतें हैं उनके ऊपर ये कयास मत कर बैठना कि आखिरत के अंदर भी तुम्हारा बेरा पार ही होगा, मसला ही कोई नहीं तुम्हारे लिए, सब कुछ कस्बी है, जो कमाएंगे वही मिलेगा हमें। अगर मैंने पिल फर्ज फर्ज नमाजें पढ़ता रहा, मैं अपनी नमाजें पूरी पढ़ता रहा और मैं बाकी चीज़ें बज़ाहिर जो इबादत है रोज़े रखता रहा मैं उनका मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन इससे बढ़ के मेरे अंदर रसूल सल्लम के कोई अखलाक और सीरत की कोई चीज़ नहीं थी, मैं अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ रहा या उनकी बात नहीं मानी मैंने उनकी, रसूल सल्लम ने क्या फरमाया था किस शख्स ने बदवा दी थी, रसूल सल्लम ने बदवा दी थी। वो आपने दी सुनी है कि रसूल सल्लम मेंबर पर तशरीफ़ ला रहे थे तो आप सल्लम ने 3 दफ़ा आमीन बोला था, तो साहबा ने पूछा था कि रसूल सल्लम आपने ये क्या बात क्या हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिब्राइल आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला की रहमत से वो शख्स दूर हो बर्बाद हो, वो शख्स जो शख्स बूढ़े माँ बाप को पाए दो या दोनों में से कोई एक माँ बाप को वो पाए और सिर्फ उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर लें। तो क्या फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आमीन। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसी शफात कबूल करेंगे, आप बताएं, जिसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा अखलाक नहीं रखा था उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल की थी। और क्या एक और बात पे क्या आमीन किया था कि वो शख्स जो रमजान का महीना पाए जिसमें अल्लाह ताला ने इतने बोनस रखे हुए हैं, माफी करने का बहाना ढूंढा हुआ, बोनस पे बोनस रखे हुए अल्लाह ताला रमजान के महीने में, और वो उस महीने से फायदा उठा के अपनी बख्शिश ना करवा सके, तो आप सल्लम ने क्या कहा था, आमीन। इसका मतलब यह है कि जो शख्स रमज़ान के महीने के अंदर एफर्ट नहीं करता, मेहनत नहीं करता, अपनी अल्लाह ताला के आगे तौबा ही नहीं कर रहे हम लोग, पूरा महीना गुजर गया हमने सच्चे दिल से कभी तौबा ही नहीं किया, अल्लाह ताला के आगे रोई नहीं हम लोग, तो रसूल सल्लम कह रहे हैं आमीन। आप सल्लम ऐसे शख्स की शफात करेंगे, ऐसे शख्स की नहीं करेंगे जिसके ऊपर बदवा दे रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, उसकी शफात कबूल होगी उस शख्स के ऊपर कि जिसके आगे जिसके सामने रसूल सल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लम के ऊपर दुरूद ही ना भेजें, तो वो शख्स भी उसकी शफात कबूल होगी जो दुरूद ही भेजता होगा आप सल्लम के ऊपर। ये तो मैं आपको मिसाल दी है, रसूल सल्लम ने इस तरह की जितनी भी हदीसें बताई इन सब क्या सोचा करें इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर आप सल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, 3 दफ़ा फरमाया आप सल्लम ने। आप सल्लम की बात जो है वो अगर आम बात भी कहें तो वो भी पत्थर पर लकीर बात है, हमारे लिए मुकदम होनी चाहिए, लेकिन आप सल्लम कसम खा के कह रहे हैं अल्लाह ताला की, और वो भी 3 दफ़ा कि खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। साहबा ने घबरा के पूछा क्या कौन कौन इतना बदनसीब होगा, तो आपने फरमाया कि वो शख्स जिसकी अजियत की वजह से उसका हमसाया जो है वो तकलीफ में रहता हो। सिर्फ इतनी सी बात, हमसाये जो है वो उसकी वजह से तकलीफ में रहते हैं, बस कोई वजह भी हो सकती है, वो घर में कोई कूड़े फेंकने वाली बात भी हो सकती है, वो आप ऊंची आवाज में कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या ऊंची आवाज में टीवी देख रहे हैं या कोई और कोई भी बात हो सकती है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोगों की वजह से, अपना मुआवजना तो करके देखिए, आप लोगों की वजह से आपकी कोई हमसाए वो लोग तंग तो नहीं है किसी वजह से भी। हमसाए में एक तो नंबर 1 राइट बाकी उन्हीं का ये जो आपके हमसाए में रहते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जो हमसाए में रहते हैं, एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 लोगों का जिक्र किया है कि जो 40 घर हैं उनसे हम साया बनता है। एक पीछे भी घर होता है आप लोगों के, डायगनल भी होते हैं, वो एक छोटा सा मोहल्ला आप समझ लें, उस इलाके के लोग आपसे खुश हैं, या बिल आखिर जब आप मरेंगे तो वो कहेंगे चलो अच्छा ही हुआ मरा है ये बंदा, या घर वहाँ से घर छोड़ के कहीं गए तो कहना चलो शुक्र है जान छुटी है। जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो बंदा मोमिन है ही नहीं, खुदा की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है, तो फिर उसकी शफात होगी चाहे वो कलमा पढ़ता हो। तो ये दो हदीसें मैंने आपको बताई हैं, ये जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें हैं इन सब बातों को पढ़ के इसी तरह ही समझने की कोशिश करें कि वाकई हमारा अमल इन सब में क्या है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के कह रहे हैं कि बंदा मोमिन है ही नहीं तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर शफात तो उस बंदे के लिए होगी ना जो इन सब चीजों के ऊपर अमल कर रहा था। इंसान होने के नाते फिर भी कभी कोई गुस्से में आके हमसाय से कोई बात हो गई, लेकिन शर्मिंदगी भी बाद में माफी मांग ले उससे। आप सल्लम का जिक्र हुआ जब तक याद रहा साथ ही सल्लाम बोलता रहा, लेकिन कभी अगर नहीं याद रहा, लेकिन एक बात यह है कि आदत कोशिश करता रहा, वो अम्मी अबू के लिए उनकी खिदमत करता रहा, लेकिन कभी गलती भी हो गई उसे, कमी कोताही अगर हो गई अल्लाह ताला जो है उस चीज़ को माफ़ करेंगे। जब कमी कोताही वाला मामला, यहाँ पे मामला आ जाता है शफात का। आप यूँ समझ लें कि आप एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे, 60 पासिंग मार्क्स थे, आपने असाइनमेंट में भी मार्क्स ले लिए, कुछ मिड टर्म में भी आ गए, क्विजेज में भी आ गए, एंड टर्म में भी आ गए, लेकिन आप पीछे रह गए। आपके मिसाल के तौर पर 51 मार्क्स हो गए, 55 मार्क्स आ गए, इस तरह करके मार्क्स आ गए, अब आते रहे कुछ होता रहा, यहाँ पे चांस है कि हाँ यहाँ पे सिफारिश की जा सकती है। तो आप सल्लम शफात करेंगे ऐसे बंदे की, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल भी करेंगे उस शफात को। लेकिन ऐसा शख्स, ऐसा स्टूडेंट मिसाल के तौर पर जो क्लासेस अटेंड ही नहीं की उसने, ना कोई क्विज दिया, ना असाइनमेंट दी, कुछ भी नहीं दिया, एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में भी चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, उसकी कौन बंदा जाके सिफारिश कर सकता है कि इसके अब तो आप थोड़ी मेहरबानी करें, इसके नंबर बढ़ा दें आप। तो अगर हम लोगों के कमाई है ही, जैसा मैंने बताया कि दुनिया के अंदर ये जो चीज़ें हैं ना कि मैं कलमा गूँ तो मैं जन्नत में जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कस्बी है, मैंने ईमान हासिल करना है। अगर मैं नहीं ईमान हासिल कर सका तो अल्लाह ताला ने जो मुझे नेमत दी थी कि मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया था, ये मुझे नहीं बचा सकेगा। कस्बी हर चीज़, हम सब ने अपना अपना ईमान हासिल करना है, हम सब ने नेकी के अमल करने, हम सब ने बुराई से बचना है, फिर दूसरों को भी तरगीब देनी है नेकी की, और बुराई से हमने दूसरों को रोकना है, इस्लाम की तालीमात के ऊपर तमाम के ऊपर अमल करना है हमने। उसके बावजूद अगर हमसे कोई कोताही हो गई तो फिर रसूलल्लाह सल्लम की शफात हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें बचा लेगी। मजीद इजाफी तौर पे ये है कि अल्लाह ताला ने, हालांकि अल्लाह ताला अला कुल्ले शैन कदीर है, हर चीज़ का अख्तियार रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने भी इंसाफ और अदल का ये मकाम रखा हुआ है कि हुकूक अल्लाह जो हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला तो माफ़ कर देंगे खुद, लेकिन हुकूक अलबाद जब तक उस बंदे के साथ कंपनसेशन नहीं होगी तब तक वो माफ़ नहीं हो सकते। जब तक उस बंदे के साथ कंपनसेट नहीं करते आप, तब तक वो माफ़ नहीं हो सकते। ये अल्लाह ताला ने ये असूल बनाया है। जिस शख्स के साथ ज्यादती हुई थी, आपने ज्यादती की थी, तो उस चीज़ को कंपनसेट करेंगे, उस दिन क़यामत वाले दिन कंपनसेशन होगी। वो मैंने आपको हदीस सुनाई भी है, होपफुली ये दोनों आयात समझ लग गई हैं कि एक है दुनिया के अंदर मकाम मर्तबा जो आपको हासिल हुआ था वो अल्लाह ताला की तरफ से ग्रांटेड था, क़यामत वाले दिन जो कुछ भी होगा वो आपकी कमाई आएगी सामने, आपकी नस्ल नहीं आएगी। अगर आप मालदार घर में पैदा हुए थे, आपके पास पैसे अच्छे खासे थे, उस अच्छे खासे पैसे में से आप थोड़े से पैसे खर्च कर देते हैं तो ये नहीं कि बाकी जो गरीब है आपने आराम से, आपके लिए मसला ही नहीं था, आप 10,000 रुपये किसी को देना हेल्प कर दें, करोड़ों के मालिक हैं उसमें से 10,000 हेल्प कर रहे हैं। एक बंदा जिसकी कमाई है ही, वो सैलरी ले ही महीने की 7,000 रुपये है, तो वो तो किसी का अगर हेल्प कर भी सकेगा वो तो चंद सौ चंद हज़ार तक ही कर सकेगा। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला के जो ना जो इंसाफ अदल है वो हर एक के हिसाब से इंडिविजुअल उसके केस के मुताबिक होगा। दुनिया की कोई जो चीज़ है वो आखिरत में, वो जिस दुनिया में ग्रांटेड है, आखिरत के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं होगा ग्रांट होने का। सब कुछ कस्बी है, कमा के लेके जाना है मैंने, गुनाह भी होंगे तो वो मैं कमा रहा होऊंगा, नेकियां भी होंगी तो वो भी मेरी ही कमाई होगी, वो आखिरत के अंदर जब आपको अपनी बैलेंस शीट मिलेगी उसमें सब कुछ क्रेडिट डेबिट के साथ मेंशन हुआ होगा कि तुमने ये गुनाह किया था उस तारीख के, इस तरह हुआ था, ये किया था, फलाना किया था, फलाना किया था, सब कुछ मेंशन है। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल को वाकयात के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे कि कब कब मैंने क्या क्या किया था तुम्हारे साथ। वह इज नजैनाकुम, और जब याद करो, और जब हमने तुम्हें नजात दे दी थी, मिन आल फिरौन, फिरौन और उसके आल से। याकूब इसके अंदर बताया था किप्ती कौम जो थी, ये उनके बादशाह जो थे फिरौन, वो लोग थे, इन लोगों के अंदर जो है इन लोगों के गुलाम बन चुके थे, ये बनी इसराइल इनके गुलाम बन चुके थे, और इनको वो बहुत बुरी तरह सलूक करते थे, उनको पूरी कौम को उन्होंने गुलामों की तरह रखा हुआ था। एक तो गुलाम, पूरी कौम ही गुलाम थी, पूरा दिन उनसे काम करवाता था, उनको शौक था, वो बना हुआ था पिरामिड्स का शौक बना हुआ था, और इन चीज़ों का बिल्डिंग्स बनाने को आपने देखा हुआ है किस तरह बनाई हुई है, इन सब बिल्डिंग्स के नीचे इनके कब्रिस्तान पूरे पूरे हैं, किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता था गुलामी के तौर पर, और थोड़ा थोड़ा जो है ना इनको पूरे दिन काम करवाया और बहुत थोड़ा सा रेस्ट देते थे, फिर काम करवाते फिर थोड़ा सा रेस्ट देते थे, और कोई चांस नहीं उठने देते थे कि कहीं से ये लोग हमारे मद्दे मुकाबल भी आ जाएं। जो सलूक इस टाइम जो है गांव के अंदर या जो चौधरी या बडेरे या उस टाइम के लोग कर रहे होते हैं उससे कई गुना बढ़ चढ़ के था, क्योंकि तब कोई बचाने वाला भी नहीं था, कब कोई गवर्नमेंट नहीं थी कि उसकी पुलिस आपके आपको बचा सकती है, कोई गवर्नमेंट की अदालत नहीं है कि उस इलाके के लोगों को बचा सकती है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स वाले नहीं है, वो लोग बिल्कुल नस्ल दर नस्ल उनके गुलाम बने हुए थे। फिर उसी दौरान, इसी ताकत के नशे के दौरान, उस फिरौन ने एक दिन ख्वाब देख लिया कि ये जो गुलाम कौम है इनमें से एक ऐसा बेटा, एक ऐसा लड़का पैदा हुआ होगा जिसने मेरी हुकूमत को सत्यानाश करके रख देगा, मेरी हुकूमत उसके हाथों बिलाखिर ख़त्म होगी। उसने ये ख्वाब देखा। इससे एक और बात ये भी पता लगती है कि ख्वाब जो है सच्चा ख्वाब वो किसी को भी आ सकता है। फिरौन को एक बंदा तो नहीं था, गुनाहगार बंदे थे जितने भी गुनाहगार हैं, उनमें टॉप की फहरिस्त में जिनमें कुरान का जिक्र है सबसे गुनाहगार बंदे का जिक्र आता है, लेकिन सच्चा ख्वाब उसे आया था। वाकई ऐसा नहीं हुआ था क्या? बनी इसराइल में से ही एक बेटा पैदा हुआ था। सच्चा ख्वाब किसी को भी आ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि वही अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, वही के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन सच्चे ख्वाब अभी भी आते रहेंगे। सच्चा ख्वाब है, उसको 46वां हिस्सा कहा गया है नबूवत का, यानी कि वही की एक शक्ल बाकी है, लेकिन हमारे जो ख्वाब हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। नबी के ख्वाब, रसूलुल्लाह सल्लम के जितने भी हदीसें हैं जिनके अंदर उनके ख्वाब का जिक्र आता है, वो तमाम की तमाम बातें वही थीं, अल्लाह ताला की तरफ से थी, प्रोटेक्टेड ख्वाब थे। जबकि रसूलुल्लाह सल्लम ने हमारे बारे में फरमाया है कि ख्वाब जो आता है आम इंसान जो गैर नबी हैं उनके जो ख्वाब आता है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो उनके अपने जहन की इख्तरा होती है, अपने ख्याल होते हैं, जो आपके आजकल कोई मामला चल रहे होंगे वो होंगे, कोई मिसाल के तौर पर कोई एग्ज़ाम हो रहा है या कोई और काम आपका था, कोई पेंडिंग था, वो चीज़ें याद आती रहेंगी। ज़्यादातर हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें शेड्यूल चल रहा होगा उसी से रिलेटेड ही होते हैं ख्वाब हमारे मोस्टली। एक और ख्वाब की किस्म है कि वो जो होता है जो शैतान दिखाता है, इसमें डरावना ख्वाब भी आ सकता है, इसमें कोई बुरा ख्याल भी हो सकता है, शैतान आपको गलत आइडिया दे किसी किस्म का। सुना होगा इस तरह का वाकया कि एक शख्स ने अपने बच्चे को ज़िबा कर दिया था कि मुझे ख्वाब में नज़र आया था इस तरह। ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आ सकता ख्वाब, वो नबी की बात और थी, ये शैतानी ख्वाब हो सकता है, शैतान की तरफ से आया था। गुमराह करने के लिए भी ख्वाब आ सकता है शैतान की तरफ से, कि कोई बंदा कहता है मैंने ख्वाब में एक बहुत नेक बुजुर्ग को देखा था, उसने मुझे ये कहा, तो बस उन्होंने मुझे कहा कि नमाजें पढ़ना छोड़ दो, तुम वो मुकाम हासिल कर चुके कि अब तुम्हें नमाजों की जरूरत नहीं है, तो मैंने नमाजें छोड़ दी हैं। इस तरह के भी वाकयात सुने होंगे आप लोगों ने, तो ये हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लम आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ते रहे थे, आपको अच्छी तरह पता है। हज़रत बकर सदी का ये मामला रहा है, हज़रत उमर का ये मामला रहा है, हज़रत अली का, हज़रत उस्मान का, तमाम का। ये हो सकता है कि कोई बंदा ये कह दे कि मेरी नमाजें अब माफ़ हो गई हैं, मसले कोई नहीं मेरे लिए, अब ये शैतान की तरफ से होता। तो गुमराह करने के लिए भी शैतान ख्वाब दिखा सकते हैं आपको, किसी और मतलब कि आप चल रहे थे नेक बंदे थे आप, शैतान ने ऐसा ख्वाब दिखा दिया उस बंदे ने नमाजें छोड़ दी और बस बेड़ा पार हो गया उसका। और ये भी हो सकता है कि कोई वल्गर किस्म का, फाश किस्म का जाना ख्वाब, वो भी शैतान की तरफ से आ सकता है। एक है ह्यूमन डिज़ायर, एक है इंसानी तकाजा। कि नेक से नेक बंदा भी क्यों ना हो, जो रात को इतलाम हो जाता है, वेट ड्रीम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो ये ह्यूमन डिजायर, ये ह्यूमन तकाजा है, इंसान होने के नाते ये होगा, यानी कि ये सेहतमंद होने की अलामत है ये, कि बच्चा जो है, लड़का जो है, जब वो प्यूबर्टी की एज, बलागत की एज जो है पा लेता है, 15 साल 16 साल जो भी एज होगी, तो उसके बाद महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा डिफरेंट उसके हिसाब से उसको होता है, ये तो उसका सेक्सुअल मेच्योरिटी की अलामत है ये। इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है ख्वाब जो देखता है इंसान, उसके अंदर शैतान जो है वो इस हद तक भी चला जाता है कि कई बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल किस्म के भी रिलेटिव ऐसे होते हैं, उनको बिल्कुल ही बरहना करके, नंगा करके दिखा देता है ख्वाब के अंदर, तक के शैतान की ये भी हद हो सकती है कि इवन और रिलेटिव, या इवन बहन को भी, माँ को, किसी भी रिलेटिव को, बहुत मुकद्दस क्लास फेलो को, कुली को, किसी को भी जाना ख्वाब के अंदर इस तरह करके दिखा दे, उसके बारे में बुरा ख्याल उस तरह का आ जाए, जिसके बारे में शायद आपने कॉन्शियसली कुछ ना सोचा भी नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा ख्वाब वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है। ये ख्वाब यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से भी ख्वाब आ सकता है, और वो ख्वाब होगा हदायत के लिए, मतलब कि लाजमी नहीं कि आप कुछ चाह रहे हैं तो कुछ हो, आपको वैसे कोई ख्वाब दिखा दिया जाए, आपने ख्वाब के अंदर एक चीज़ देख ली, उसके बाद आपकी लाइफ उस हिसाब से चेंज हो जाए, हदायत के लिए होगा। आपने ये भी, आपको पता है कि एक अल्लाह आप सल्लम ने एक हमें दुआ सिखाई है कि अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं तो अल्लाह ताला से पूछने के लिए, अल्लाह ताला से मशवरा करने के लिए एक दुआ है जिसका नाम है दुआ इस्तखारा। इस्तखारा का मतलब है खैर तलब करना, अल्लाह ताला से बेहतरी चाहना। वो दुआ मांग के अल्लाह ताला से हम इस्तखारा कर सकते हैं। अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी, ये दुआ इस्तखारा भी उन्हीं टॉपिक्स में फॉल करता है कि हमारे उलमा ने हमें ये बावर करवा दिया है कि हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, तो इस्तखारा हम किसी और से करवाएंगे, कोई नेक बंदा होगा हम उससे इस्तखारा करेंगे। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया था, ये नहीं कहा था कि कोई तुम्हें अगर मसला पेश आ रहा है तो आके मुझसे करो। हालांकि सहाबा आके पूछा करते थे आपसे सल्लम से कि आपसे सल्लम ये मसला है या फलानी चीज़ है, उसके बावजूद आपसे सल्लम ने अल्लाह ताला से खैर तलब करने के लिए ये बता दिया कि ये तुम मांगा करो, अल्लाह ताला तुम्हें खुद ही हिदायत देगा। बंदे और अल्लाह के ताला के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं है, तो खैर डायरेक्ट तलब करो अल्लाह ताला से। तो उसके अंदर भी जो शक्ल हो सकती है कि आपको अल्लाह ताला किस तरह बताएंगे, उनमें से एक शक्ल ख्वाब के जरिए भी आपको पता लग सकता है। तो ख्वाब की ये तीन किस्में हो सकती हैं, लेकिन साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में ये भी फरमाया कि सबसे जो बदतरीन किस्म का जो झूठ है, सबसे गंदा तरीन झूठ जो है, सबसे बुरा जो झूठ हो सकता है, वो ये है कि एक इंसान ऐसा ख्वाब सुनाए जो उसने देखा ही नहीं है। मैं कोई ऐसा ख्वाब आके बयान कर दूं जो मैंने देखा ही नहीं हुआ। पिछले दिनों जब डॉक्टर ताहिल कादरी ने किया हुआ था इस्लामाबाद में, उन्होंने धरना जब लगाया हुआ था लॉन्ग मार्च का, उसके बाद टीवी के ऊपर प्रोग्राम भी आए थे, एक वीडियो थोड़ी पॉपुलर हुई थी जो उनकी ब्लैक एंड वाइट वीडियो है, कि उसके अंदर एक ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं, वो रो रो के बता रहे हैं कि मुझे आके रसूल सल्लम मुझे ख्वाब में आए और मैंने कहा कि मैं उलमाए पाकिस्तान के दावत के ऊपर मैं पाकिस्तान तशरीफ लाया था, लेकिन उन्होंने मेरी कदर नहीं की। साथ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, लोग भी आवाम भी आगे रोए जा रहे हैं उनके आगे, और वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ना बस ये है, तो मैं उनके पैर पड़ रहा हूँ आपसे सल्लम के, क्या किसी तरह से रुक जाए रुक जाए। वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकता, उलमा ने मेरी जो है ना कदर नहीं की, कदर नहीं की, कदर नहीं की। तो मैंने कहा कि कोई तरीका बताएं जिसके ज़रिए आप रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ताहिर, अब तुम मेरी जो है ना मेज़बानी तुम्हारे ज़िम्मे है, मेरा रहने सहने का, मेरे खाने पीने का, मेरा टिकट आने जाने का और मदीना वापस जाने का टिकट ये तुम्हारे ज़िम्मे है। अगर एक पहला वाला हिस्सा होता तो शायद मान लिया जाता, ये तो मेरे नज़दीक से तोहीन कर रहे हैं ये शख्स रसूल सल्लम की, तोहीन है आप सल्लम की, कि आप सल्लम के बारे में ये कहा जाए कि खाने पीने का बंदोबस्त करो, मेरा मेरे रहने सहने का बंदोबस्त करो, मेरा टिकट का, नाउज़ुबिल्लाह, ये क्या बात है। ये तो मेरे ख्याल में केस होना चाहिए ऐसे शख्स के ऊपर कि ये तोहीन रसालत हुई है, ये कि आप सल्लम को किस मकाम पर ला के इसने खड़ा कर दिया। झूठा ख्वाब सुनाना आप सल्लम था, सबसे बुरा तरीन जो है ये उसकी शक्ल है झूठ की। ख्वाब का टॉपिक चल रहा है, एक और बात ये भी बता दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जो शख्स मुझे ख्वाब में देखे, अगर वाकई ख्वाब में देखा, एक तो है ना ख्वाब खुद ही झूठा बना लिया, अगर कोई शख्स मुझे ख्वाब में देखे तो उसने यकीनन मुझे ही देखा है ख्वाब में, क्योंकि शैतान मेरे रूप में नहीं आ सकता। इसमें इजाफी तौर पर ना ये बात भी पता होनी चाहिए हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने लेक्चर के अंदर ये बात सुनी थी उन्होंने ये बात इसकी वजाहत की थी इस हदीस की। उन्होंने कहा था कि एक शख्स एक कपल आया था मेरे पास, उन्होंने आके बताया कि हमारे एक अजीब से उन्होंने बात सवाल पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लेकिन कोई अजीब सा ही सवाल था उनका। उन्होंने कहा कि इस तरह हमने करना है कि उन्होंने कहा क्यों, जो जो जिनका लेक्चर था उन्होंने कहा क्यों इस तरह क्यों करना है, उन्होंने कहा हमें ख्वाब में आप नज़र आए थे, उन्होंने हमें इस तरह कहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा आप नज़र आए थे, आप का पेरेंट्स कैसे थे आप? उन्होंने कहा कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल चमकता हुआ, सफ़ेद रंग की दाढ़ी, बहुत बुजुर्ग शख्सियत, बहुत इस तरह के स्कॉलर थे जिन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था ये आप तो आप ख्वाब आप या तो ख्वाब ही झूठा है ये वाला, तो आप का तो ये रूप था ही नहीं। आप तो जब गए थे दुनिया से तो उस वक्त आप की दाढ़ी में कुल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि टोटल दाढ़ी में बाल ही सिर्फ 10 थे, ब्लैक बाल थे आप के, सफेद बाल जो थे वो सिर्फ 10 थे। और आप तो बहुत बुजुर्गी की उम्र को पहुंचे ही नहीं थे, चांद का हिसाब होता था 63 ईयर्स। इसके हिसाब से जो हम लोग अपनी ये डेट ऑफ बर्थ तो हम तो सूरज के हिसाब से करते हैं, तो तकरीबन जो है ना ये बन जाता है कोई 1.5-2 साल कम बनते हैं, 61-62 ईयर्स की एज बनती है। और आप आखिरी वक्त तक आपको पता है आप जो थे वो कुर्बानी भी खुद किया करते थे, वो जंगों में भी लड़े हुए आप, वो ऐसी तो कोई आप के ऊपर बुजुर्गी नहीं आई थी, ऐसी तो कोई बुजुर्गी नहीं आई थी आप के ऊपर कि कोई कमजोरी पड़ गई हो, कंधे झुक गए हो या कुछ हो गया हो। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये आप या तो आप ख्वाब ऐसी बना के आप अपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप का तो ये रूप था ही नहीं। तो फिरौन ने ख्वाब क्या देखा था? फिरौन ने ख्वाब ये देख लिया कि मेरे इनमें एक लड़का पैदा हुआ था। तो अब उसके पीछे उसने क्या तरकीब सोची, क्या किया उसने? उसने कहा कि इनमें से जिस घर में जो बच्चा पैदा होगा मेरे फौजी हैं वो जाके पूरा हर वक्त जो है ना वहाँ पे मुआयना लेते रहते रहे, हर वक्त की खबर रखी होती किस घर में कितनी औरतें कौन सी औरत प्रेग्नेंट है इस वक्त। और जब पता होता था कि डिलीवरी हो रही है या होनी है या हो गई है, वो मौजूद होते थे उधर। डिलीवरी हुई है साथ ही देखा बच्चे का जेंडर क्या है, अगर लड़का है तो ये उसी वक्त ही मार दिया उसे, अगर लड़की है तो उसको छोड़ दिया जिंदा रहने दिया। तो एक तो गुलामी बिल्कुल दबा के रखा हुआ है उन्हें, किसी किस्म का कोई हक नहीं उनको देते थे, और साथ हद ये हो गई थी जुल्म की कि अपने उस ख्वाब की उसकी वजह से कि मेरी सल्तनत ना चली जाए तो मैं तुम्हारे बेटों को मारते थे। उसका अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, यसू मून अकुम सू अल अजाब, उन्होंने तुम्हें एक बहुत ही तकलीफ देह किस्म के अजाब में मुबतला किया हुआ था। वो रसवाई और तकलीफ देह अजाब क्या था? युजब्बिहू ना अबनाकुम, तुम्हारे बेटों को तो ज़िबा कर दिया करते थे। ये तो तसव्वुर में तो लाएं, ख़ास तौर पे आप लोग जो बड़े हैं जिनके औलाद भी हुई है अपनी, तो तसव्वुर में आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या कैफियत होगी कि आपको पता लगे कि मेरे घर बेटा हुआ है, बेटे की खातिर जिसके लिए आज हम इतनी दुआएं मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला के आगे। उस दौर में तो बेटा बहुत ही कुछ चीज़ समझी जाती थी और बेटियाँ तो कुछ भी नहीं समझा जाता था तब उस दौर में, लेकिन अब तक हम बेटों को भी बहुत कुछ समझते हैं। तो बेटा जो है उसके लिए एक तो दुआएं मांग रहे हैं, बेटा हो गया और आपके सामने अला के उसकी गर्दन के ऊपर छुरी फेर दी जाए और उसको मार दिया जाए, खून खून करके छोड़ के चला जाए, संभालो बस है। सोच सकते हैं क्या 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 गम गुस्सा क्या कैफियत हो सकती है, और कुछ भी नहीं कर सकते आप उसके ऊपर। अल्लाह ताला उस नेमत को गिनवा रहे हैं किस कदर तकलीफ में उन्होंने तुम्हें मुलव्वस किया हुआ था और तुम्हारे लिए क्या रास्ता ही नहीं, तुम्हें समझ आ रहा था किस तरह जान छुटेगी इससे। तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और यस्तहयूना निसाकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने दिया उसने, जिंदा रहने देते थे। वफी जालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अजीम, और इसके अंदर तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर बहुत ही सख्त किस्म की तकलीफ और बहुत सख्त किस्म की आजमाइश थी। अभी जो हमने पिछली क्लास के अंदर आयत क्या पढ़ी थी वो थी सब्र से मुतल्लिक, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला जो है वो आजमाता है लोगों को, अल्लाह ताला आजमाना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर बहुत शदीद अजाब मुबतला किया हुआ था और तुम्हारे ऊपर इस चीज में बहुत बहुत आजमाइश थी कि तुम क्या करते हो। थे तो ये वही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनमें थे, ये वही नस्ल चली आ रही है, अल्लाह ताला को मानने वाले थे, तो किस कदर अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था। ताला कह रहे हैं उसको याद करो। फिर क्या किया मैंने? वाइज, और जब फ़र्क ना बेकुमुल बहर, तुम्हारी खातिर मैंने दरिया को समंदर को फाड़ दिया। ये क्या वाक़या हुआ था कि जब बनी इसराइल एक ख़ास मुद्दत तक 8-10 साल के करीब एक ख़ास मुद्दत तक जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास मौजूद रहे और मौजज़ात आते रहे, जब एक ख़ास वक्त हो गया अल्लाह ताला की तरफ से अब हुक्म आ गया कि अब तुम बनी इसराइल को लेके रातों रात यहाँ से निकल पड़ो, और फिरौन तुम्हारा ताकुब करेगा, तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो लोग निकले थे, फिरौन को जब इतला हो गई कि वो लोग बनी इसराइल चले गए हैं, उसने अपनी पूरी फौज तैयार की और भगाया उनके पीछे। ये पहुँचते पहुँचते जब वो जो था रेड सी वाली लाइन है, वो ऊपर जाके जो स्विस कनाल वाला जो एरिया है, ये जब उस दरिया उस समंदर के पास साहिल पे पहुंचे, तो उन्होंने पीछे देखा कि वो तो फिरौन का लश्कर आ रहा है। भागे तो कहाँ भागे, आगे तो दरिया बंद हो गया। और इन्हीं की कौम के लोगों ने आगे मूसा कहा, मूसा तुमने मरवा दिया, तुमने और तुम्हारे खुदा ने हमें मरवा के रख दिया यहाँ पे लाके, अब क्या करेंगे हम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि यकीनन मेरा जो खुदा है वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि ये जो तुम्हारा आसा है इसको तुम मारो समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर मारो। तो उन्होंने मारा, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो पानी जो था, समंदर जो था, वो फटा, और फट के पूरा रास्ता बन गया उसके अंदर। पूरे दो चट्टाने बन गए पानी की दूसरी तरफ, और बीच में रास्ता अल्लाह ताला ने बना दिया इसके लिए। इतना बड़ा मौजा देख के, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजा देख के, फिरौन उसके लश्कर को तो सजदे में गिर पड़ना था चाहिए था, उसने उसके कोई नसीहत नहीं हासिल की। अभी तो हम लोग मंजर भी नहीं इमेजिन कर सकते कि अगर हमारे सामने समंदर फटे तो क्या होगा, जो इतना गहरा समंदर होता है किस तरह पानी उठ के जाएगा, क्या होगा। और वो हुआ, फौरन हुआ, और बनी इसराइल भागे, और फौरन ने ताकुब किया, इन्होंने जैसे ही क्रॉस किया अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, और वो पानी ने वापस नेचुरल जो उसका फिजिक्स का लॉ होता है वो उसके ऊपर वापस आ गया पानी, कि उसने अपने सरफेस को कीप करना था, मेंटेन करना था, और वो गर्क हो गए। तो जो तुम्हें छुटकारा लग ही नहीं रहा था कि किसना जान छुटेगी हमारे फ़िरौन से, फ़िरौन के जुल्म से, तो उस चीज़ को याद तो करो। व इस फ़रक ना बेकुमुल बहरा, तुम्हारी खातिर हमने दरिया को और समंदर को फाड़ दिया, फन जई ना कुम, और निजात दे दी हमने तुम्हें, व अग़रक ना आले फ़िरौन, और आले फ़िरौन को पूरा का पूरा लश्कर समेत को गर्क करके रख दिया हमने, वह अन तुम तंजुरुन, और ये सब कुछ तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था, तुम देख रहे थे कि ये मंजर जो पेश आया था। इस नेमत को अल्लाह ताला गिनवा रहे हैं कि मेरी उस नेमत को तो याद करो कि जब तुम उस मुसीबत में फंस गए थे तो मैं किस तरह मौजाती तौर पे तुम्हारी मैंने जान छुड़ाई थी उनसे, और तुम लोगों को उस गन से, उस चीज से आजाद कर दिया था मैंने तुम्हें। जो आगे जाके हम पढ़ेंगे वाकयात और भी पढ़ते रहेंगे, नस्ल दर नस्ल ये जो कौम थी ये अल्लाह ताला की नाफरमान थी। हमारे लिए क्या है, मैं दोबारा वो आपसे सल्लम की जो अहादीस थी उनको, उनके ऊपर दोबारा टच करता हूँ, और उसको उसके ऊपर कंक्लूड करता हूँ मैं, कि हमारे लिए क्या आपसे सल्लम फरमाया था कि तुम पर भी वही सारे हालात आएंगे और तुम भी उसी तरह गुमराहियों में मुबतला होगे जैसे बनी इसराइल हुए थे। इसका आखिरी हिस्सा जो था जिसके ऊपर मैंने कहा था मैं बताऊँगा, वो क्या था कि आपसे सल्लम फरमाया था, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्लतन, कि अगर बनी इसराइल जो है वो 72 फिरकों में बट गए थे, व तफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्लतन, तो मेरी उम्मत जो है ये 73 फिरकों में टूट जाएगी, बट जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार। इन इन बातों के ऊपर मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि वो लोग अगर इस हद तक फिरका फिरका हो गए थे तो मेरी जो उम्मत है ये भी उससे फिरका फिरका हो जाएगी और सब के सब आग में जाएंगे। इससे तो फिर हम लोग बिल्कुल ही कुछ और समझ लें, फिर तो सारे के सारे जना आग का ईंधन बनेंगे। लेकिन आगे क्या फरमाया, क्या है, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सवाए वो उम्मत जो अभी तक वहदत के ऊपर कायम रही थी, जो फिरके नहीं हुई थी बल्कि असल के ऊपर कायम रही थी, जो आप सदरम से पूछा गया कि कौन लोग हैं, तो फरमा दिया कि डिटेल बता दी, माँ यानी कि जो, माँ अना अलैही, जिसके ऊपर मैं हूँ, जिस तरीके के ऊपर मैं हूँ, वह सहाबी और जिसके ऊपर मेरे सहाबी हैं। ये हदीस के अल्फाज आपने बहुत सुने होंगे, ये वाले, ये कोई नई पहली दफ़ा नहीं सुन रहे आप लोग ये हदीस। इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो यही है, जो फिरका करना और तोड़ना, उसके बारे में थोड़ा सा पहले भी वजाहत हो चुकी थी। एक हदीस आपको सुनाई थी सही बुखारी की, कि जिसके अंदर आपसे सल्लम से पूछा गया था, आपसे सल्लम ने बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तकलीफ़ें आएंगी या ये फितना होगा, तो आपसे सल्लम ने पूछा क्या करें, तो आपसे सल्लम ने कहा कि जो लीडर है और जो उम्मत है उसके साथ जुड़े रहना। और आप सहाबा ने पूछा, अगर कोई है ही नहीं, अगर कोई लीडर ही ना हुआ, कोई खलीफा ही ना हुआ, और ना ही उम्मत उस तरह वादत हुई बल्कि फिरके हो गए, तो फिर क्या करेंगे। तो आपसे सल्लम ने क्या फरमाया, फातजिल फराक का कुल्लहा, उन तमाम फिरकों से फिर तुम किनारा कशी इख्तियार करना, उन सब फिरकों से तुम दूर रहना। ये यहाँ पे टोकन वाली चीज़ है। ये मैं आपको एक अपने अमल की भी मैं आपको बात बताता हूँ। अगर कहीं मस्जिद कहीं बन रही हो, कहीं हेल्प करना हो, या मस्जिद के अंदर जो होते हैं एहतियात होते हैं, जो उन्होंने बॉक्स रखा होता है डोनेशन का, मैं किसी ऐसी मस्जिद में पैसे नहीं देता जिसके बाहर लिखा होगा ये अहले हदीस की मस्जिद है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये हनफी मस्जिद है। जिस मस्जिद के बाहर फिरके का नाम लिखा होता है उस मस्जिद में मैं कभी डोनेशन नहीं देता, क्योंकि इनको पैसे देने का मतलब यह है कि ये अपनी तकरीरें भी वही करेंगे कि ये फिरका वारियत को भड़काएंगे। पहले तो लेबल ये लगा लिया कि ये मस्जिद है ही उन लोगों की, बस ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, ये सिर्फ अहले हदीसों की मस्जिद है, ये सिर्फ मस्जिद बरेलियों की मस्जिद है, ये फलाने फिरके की मस्जिद है, ये फलाने फिरके की मस्जिद है। तो जो तरीका अभी का था और जो तरीका उनके सहाबा का था, उनको जो फॉलो करेगा वो बच जाएंगे, और अगर बच जाएंगे इसका मतलब है शफात भी फिर उन्हीं को नसीब हो जाएगी। तो आप के तरीके क्या थे उसके लिए सीरत नबी पढ़ें, और उसके लिए रसूल सल्लम की जो हदीसें हैं जो पढ़ें उनके ऊपर अमल करें। किताबें मिल जाती हैं, आपको भी मिल जाएंगी किताबें, रसूल सल्लम की हदीस की किताब कोई पकड़ लें आप लोग, एक आदत ये बना लें कि आज मैंने एक हदीस पढ़नी है और उस पर आज से अमल करना है, कल मैं एक और हदीस पढ़ लूँगा, कल से मैं उस पर अमल कर लूँगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक।